यह प्रवचन हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 21 के श्लोक 18 पर दिया गया। हरिद्वार में वर्ष 2001 में 1 से 7 मई तक आयोजित वेणु गीत सप्ताह के अंतर्गत 7 मई की प्रातःकालीन बैठक में
सखी री मुरली भई पटरानी 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 सखी री अधर सुधा अधर सदा सुख करत श्याम के अधर सदा सुख करत श्याम के सुधा पियत इत रानी सखी री सुधा पियत इत रानी सखी री मुरली भई पट रानी सखी री मुरली भई पट रानी। अरे सखी मुरली पट रानी हो गई। पट रानी का मतलब है रानियों में सबसे श्रेष्ठ। कहने का आशा है कि अब राधा कुछ नहीं रही, राधा तो इसकी दासी हो गई, अब मुरली ही पट रानी हो गई।
मोहे पशु पंछी द्रुम बेली मोहे पशु मोहे पशु पंछी द्रुम बेली मोहे पशु जमुना उलटी बहानी सखी री जमुना उलटी बहानी सखी री मुरली भई पट रानी सखी री मुरली भई पट रानी मुरली भई पट रानी सखी री मुरली भई पट रानी सुरनर मुनि बस भय नाद के सुरनर मुनि सब बस मन ध्यानी सखी चली बड़ाई तीनों भुवन में
तीनों लोक में प्रशंसा चल रही है केवल ब्रज में नहीं।
तीनों भुवन में चली बड़ाई अस्तुति मुख मुख गानी सखी अस्तुति मुख मुख गानी सुर श्याम की अब अर्धांगिनी सुर श्याम की अब अर्धांगिनी सुर श्याम की अब अर्धांगिनी सुर श्याम
अरे कहाँ कि बांस और झाड़ और धांगनी बनकर लपट रहे थे झाड़ पेड़ झा ही कहा कि झाड़ी आकर के कृष्ण की अर्धांगिनी बन गई।
अंताय मद्रिदबला हरिदास वर्यो
अंताय मद्रिदबला हरिदास
राम कृष्ण चरणस्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्जा पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलैः अहो यत्र यत्र कृष्णः प्रयाति तत्र तत्र प्रयासमर्थानां पुलिन्दीनाम् आशां भाग्यं दूरे अस्तु स्थिरो अपि अयं श्रीगोवर्धनः परं भाग्यवान् इत्याहुहन्त गोपियां फिर आपस में कहती हैं हे अबलाओं पुलिंदियों के भाग्य को कोई क्या कह सकता है जत्र जत्र कृष्ण प्रयाति तत्र तत्र प्रयाण समर्थाना वृंदावन में श्री कृष्ण जहां जहां प्रयाण करते हैं घूमते हैं वहां वहां उनके साथ वहां वहां जाने में पुलिंदी असमर्थ है क्योंकि सचल जीव है घूमती है इधर वो तो भाग्यशाली है ही एक स्थान पर स्थिर रहने वाला गोवर्धन कितना भाग्यवान है जरा इसको तो विचार करो कृष्ण जहां जहां जाते हैं वहां वहां गोवर्धन नहीं जा सकते अचल है स्थिर है फिर भी इनका परम भाग्य इस श्लोक में गोपियां अपनी सखियों को गोपियां गोपिया या सख्या नहीं कह रही अबला कह रहे हे अबला अबल का अर्थ होता है जिसमें बल ना हो अबला बहुवचन स्त्रीलिंग में है क्या बल नहीं है गोपियों में न बलम जासम ता अबला तुम लोगों को या हमको सर्वदा अपने परिवार में पति आदि के अधीन रहना पड़ता है चाहते हुए भी हम कृष्ण की सेवा नहीं कर पाती बल काम नहीं कर पाती गिरिराज जी का आश्रय लेंगे तो यही हमारे बल है गिरिराज जी जाने में गोवर्धन पर्वत में जाने में गोपियों को घर के लोग भी रोकते नहीं क्योंकि अब प्रसिद्ध बात थी ब्रज में कि गिरिराज जी की कृपा से मनोरथ पूरा हो जाता है और वहां पर मानसी गंगा में स्नान करके हरिदेव जी के दर्शन की छूट थी लोग जाते रहते इसलिए गांव की स्त्रियां भी जाती थी और गोवर्धन पर्वत के ऊपर या घाटियों में जहां तहां कृष्ण खेलते रहते हैं गोचारण करते हैं तो वहां पर कृष्ण से भेंट भी हो जाती है गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज तो इसलिए गोपियां यह कह रहे हैं कि गोवर्धन का समाश्रयण करने से आश्रय करने से हमारा बल हो बढ़ जाएगा यही बल है गोवर्धन की शरण लेना यही बल और इसके बिना तो तुम लोग अबला कृष्ण दर्शन होना कठिन परवस्ता अथवा श्री कृष्ण के प्रेम में इतना विह्वल है और शोक में भी कृष्ण से मिलन नहीं होता है चल नहीं पाते हैं पर कमजोर जैसा हो गई है यह प्रेम का एक विकार है दुर्बलता तो इसलिए कह रही हूं अबला हे बलहीना बल से सुन और हंत इति हर्ष अथवा विस्मय श्री कृष्ण स्वामी कहते हंत इति हर्ष हर्ष के कारण गोवर्धन को देख करके आनंद आ गया कि यहाँ तो श्री कृष्ण होंगे ही यहाँ प्राय गोचारण करते हैं तो उनसे भेंट हो जाएगी इसलिए हंत शब्द पहले निकल हंत अथवा विस्मय में कि यह पर्वत होकर के जड़ होकर के अचल होकर के और इतनी कृष्ण की सेवा करता है। हमारा जीवन अधन्य है कि हम सेवा नहीं कर पाते। हम तो शब्द का है तत्पर्य, तो अयम का क्या तत्पर्य का अर्थ है यह है। इसी का सनातन गोस्वामी लिखते हैं अयम इति तदानीम श्री गोवर्धनांतिके एवं तासाम निवासेन साक्षात अंगुल्या दर्शयन्ति। उसमें ऐसा लगता है कि गोपियों का निवास गोवर्धन पर्वत के निकट ही था, एक घंटे के लिए हो या चार घंटे के लिए हो, अथवा गोप लोग अपना स्थान बदलते रहते हैं तो हो सकता है कि उस समय गोवर्धन पर्वत के निकट ही बस रहे। तो गोवर्धन बिल्कुल निकट हैं, दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए अयम शब्द का यह। यदि दूर होते तो अयम शब्द नहीं कहते, तो अपनी अंगुली से गोपियां दिखा रही हैं कि अरे सखी यह अद्री यह पर्वत निश्चित ही भगवान के समस्त दासों में, श्री कृष्ण के दासों में सबसे श्रेष्ठ, हरिदास वर्ज। अथवा अयम का अर्थ है श्री कृष्ण प्रियतमत्वेन तस्य तासु सदा साक्षात एव परिस्फुरते। श्री कृष्ण का प्रियतम होने के कारण, कृष्ण की प्रियतम वस्तु होने के कारण गोवर्धन पर्वत गोपियों के हृदय में साक्षात परिस्फुरित होते रहते हैं, इसलिए अयम शब्द कह रहे हैं। दूरी का बोध नहीं हो रहा है, इतना परिस्फुरण हो रहा है गोवर्धन का अपने चित्त में अयम शब्द। तो दो अर्थ किए गए, या तो गोवर्धन के निकट हैं अथवा गोवर्धन का बहुत अधिक स्मरण मन में हुआ है, प्रियतम के नाते से, कृष्ण के नाते से। किंवा परमादरेण तम नामा ग्रहणा, तीसरा अर्थ करते हैं शीतल सनातन संग, अथवा गोवर्धन पर्वत के प्रति इतना गौरव भाव है, इतना महान आदर का भाव है, इसलिए उनका नाम। हे सख्य अयम अद्रि गोवर्धन ध्रुव हरिदास सुश्रेष्ठ, निश्चित ही सबसे श्रेष्ठ है हरिदास। कुतः कैसे जानती हो, इति अत आह तब कहते हैं जस्मा, क्योंकि राम कृष्ण यो चरण स्पर्शेन प्रमोदो जस। कैसे मालूम हो गया कि प्रमोद में है कि गिरिराज गोवर्धन पर्वत कहते हैं। जब तृणाद्युद्गम निधेन रोम हर्ष दर्शना, इसमें सखियों ये तृण आदि का जो उद्गम है यही हर्ष का चिन्ह है, हर्ष हो। किंच जब तय जस्मात मानम तनोती, और सबसे बड़ी बात यह है कि गोवर्धन पर्वत कृष्ण और बलराम का तथा गौओं का और गोपों का सबका बहुत ही सम्मान करता है, पूजा करता है, सत्कार करता है। कैसे, पानी यसूजवस कंदर कंद मूल निर्धर का जल, और इसके साथ साथ और भी पान के ऐसे थे मधु हैं, पर्वत में बहुत से वृक्ष है उससे मधु स्रावित होते हैं, मधुमक्खियां मधु लगाती हैं, तो पानी का और मधु भी हुआ। यवस सुकार से सुंदर, हर्ष उपकार रह गए हैं, लेकिन छंद के अनुरोध से आर्ष प्रयोग किया गया है, छंद को पूरा करने के लिए सौ में दीर्घ उकार लगाया गया। सुयवस, सुयवस है, यवस का अर्थ होता है तृण भोजन। हम लोग के यहाँ भोजपुरी में इसको गवत कहते हैं, यवस गवत, यवस तृण आदि गायों के भोजन, पशुओं के भोजन को यवस कहते हैं। तो गोवर्धन पर्वत पानी देते हैं, बहुत सुंदर यवस देते हैं, और कंदर कंद मूल आदि के द्वारा कृष्ण का सत्कार करते हैं गौओं के साथ और गोपों के साथ। मानम तनोति सह गोभी ही गणेन सहित गणेन सखी सह समूहेन च वर्तमानयो।
कई
किन वस्तुओं से स्वागत करते हैं? पानी यही सुजवस सहित
शोभन त्रिणय।
सुजवस का अर्थ शोभन त्रिणय कंदरैश्च कंदमूलैश्च यथोचितम। अब जो यथोचितम का अर्थ है कि किसको किसका सम्मान किन वस्तुओं से कर रहे हैं ये समझ लेना चाहिए। गोवर्धन पर्वत पानी द्वारा सुंदर त्रिणादि द्वारा और कंदरा द्वारा कंदमूल फल द्वारा यथोचितम स्वागत करते। यथोचितम गायों के लिए सुंदर यवस, बच्चों के खेलने के लिए कंदराएं और बच्चों के लिए कंदमूल, कृष्णा बलराम के लिए कंदमूल। ऐसा नहीं कि गायों के लिए कंदमूल और यवस बच्चों के लिए कृष्ण के लिए, यथोचितम समझ लेना चाहिए। इन सब वस्तुओं द्वारा गोवर्धन सत्कार करते हैं सबका, इस कारण से भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ। ये तीन बार हरिदास शब्द का प्रयोग किया गया है भागवत में, जैसे महाराज युधिष्ठिर के लिए हरिदास से राजर्षे राजसूय महोदय। हरिदास राजर्षि युधिष्ठिर के राजसूय महोत्सव की लोगों ने बहुत सराहना की, युधिष्ठिर महाराज को हरिदास कहा गया। और कृष्णम संस्मारयन् रेमे हरिदास ब्रजवकृष्ण। और उद्धव जी के लिए हरिदास शब्द का प्रयोग किया गया है, ब्रजवासियों को कृष्ण कथा द्वारा वे रमा दिए, कृष्ण की याद दिलाते रहे ब्रजवासियों। तो श्री सुखदेव गोस्वामी हरिदास का दो स्थान पर श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है हरिदास, लेकिन कृष्ण प्रेमी चूड़ामणि गोपियों के मुख से यहां निकल रहा है हरिदास वर्य, हरिदासों के द्वारा वर्णीय वर्य, जिसका वर्ण किया जाए उसको ग्रहण किया जाए उसको वर्ज का इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो तीन हरिदास हुए, युधिष्ठिर महाराज, उद्धव जी और गोवर्धन जी। पर इन तीनों में भी हरिदास वर्ज श्री गोवर्धन, और जो केवल हरिदास शब्द का प्रयोग है, यह हरिदास वर्ज हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ, इसलिए कि ये सब काम करते हैं यथोचितम अतो अयम अति धन्य इत्यादि। इसलिए श्री गोवर्धन जी सबसे अधिक धन्य है। यहां पर हरि शब्द कहा गया है, तो हरि शब्द का अर्थ है तो डायरेक्ट श्री कृष्ण होता ही है, परंतु इसके साथ ही साथ भगवान के जितने भी स्वरूप है सबके लिए हरि शब्द का प्रयोग किया है। इस महामंत्र में 8 बार हरि शब्द आया, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम।
भगवान के जितने भी नाम रटे जाते हैं ये राम और कृष्ण मिला करके 8 हुए और 8 अकेले हरि शब्द बोला जा रहा है। हरि का संबोधन में हरे हो जाते हैं। कपि इकारांत पुल्लिंग शब्द है तो इसका संबोधन में कपे हो गए, ऐसे हरि का हरे हो जाते हैं। भगवान के 3 नाम है इनको सजा करके रखा है। और जो लोग बहुत आग्रह करते हैं कि इसमें राधा रानी का नाम नहीं है, तो इसीलिए हरे संबोधन को प्रथमा एक वचन में हरा कह करके व्याख्या की जाती है। हरा को कहेंगे हरे संबोधन में, तो हरा का क्या अर्थ? हरा का अर्थ है कृष्ण मनोहरा, कृष्ण के मन को हरण करने वाले, या किसी भी व्यक्ति के दुख का हरण कर लेने वाला, तो हरा का। तो ऐसे ब्रज में और जगह पर प्रचलित है, जैसे एक मंत्र है जुगल मंत्र राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे, तब इसको भी महामंत्र को भी तब इस तरह से व्याख्या बुलाया जाता है, हरे कृष्ण मतलब राधे कृष्ण, और हरे राम का अर्थ भी हुआ राधे राम, राम मतलब रमणीय श्री कृष्ण, सबसे सुंदर कृष्ण, और कृष्ण मतलब आकर्षक कृष्ण और रमणीय कृष्ण, दोनों का अर्थ एक ही है राम है। इस श्लोक में भी जो राम शब्द आया है उसको कृष्ण ही अर्थ होगा, कृष्ण अर्थ होगा इसमें किया गया, लेकिन जो परंपराएं हैं अनादिकाल से ये सब बताती हैं कि हरे जो शब्द है यह भगवान हरि का ही है संबोधन निष्पक्ष बात कही जाए, और भगवान के ही नाम को रटने की व्यवस्था चली है अनादिकाल से, बाद में उनकी शक्तियों को उनके साथ प्रकट करने की परंपरा चली वैष्णव में, क्योंकि धीरे 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 क्या लगभग बहुत शुष्क होने लगा, जैसे जैसे काल दिखता गया वैसे वैसे लोगों की समझ कम होती गई, इसलिए ब्रह्म ब्रह्म शब्द तो करते थे लेकिन ब्रह्म की शक्ति नहीं मानते थे, इसीलिए भगवान की क्रियाओं को बाद में उनके साथ रखा गया। नहीं तो आपने सुना है गोविंद देव जी की अकेले मूर्ति थी, मदन मोहन जी की अकेले थी, तो योग की आवश्यकता समझ करके यह स्थापित किया गया, और वैसे वास्तव में भगवान सदा अपने शक्तियों से युक्त है। तो हरि शब्द का क्या अर्थ होता है, जगतः अशेषम पापम दुखम चित्तम च यथाजथम हरति इति हरि, जो जीवों के पाप को दुख को और चित्त को हर लेते हैं उन्हें हरि कहा जाता है, यथाजथम। अब किसके पाप को हरते हैं, किसके दुख को हरते हैं और किसके चित्त को हरते हैं, ये अलग अलग बात है। जैसे गीता में कहते हैं सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तो पाप का हरण किए, और पाप से ही दुख होता है, इसलिए पाप हरण के द्वारा भगवान सब दुख हर लिए, जब दुख के मूल को ही हर लिए तब तो दुख बचेगा, तो मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें समस्त दुखों से मुक्त कर दूंगा। पापों के कारण जो दुख हो रहा है उससे हर लेंगे, और पाप शब्द इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आगे भी पाप वासनाएं नहीं रहेंगी, मैं नष्ट कर दूंगा, मेरी शरण में आओ, भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं। और कोई पूछे कि आपकी शरण में आवे लेकिन और कोई थ्रू हो या और किसी का कुछ परसेंटेज शरण ले, मैंने ये कर माँ में कम मेरी शरण में आओ, एकमात्र मेरी शरण में आओ तो मुझे तुझे मैं तुम्हें मैं समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान है पाप हर लेते हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान पाप हरण करके और उस पाप से लिप्त हो जाते हैं, या अपने घर में या अपने ऐसी में रख लेते हैं सारा पाप, जैसे भगवान सूर्य रोज अंधकार खाते हैं, रात का नाश करते हैं अर्थात अंधकार का हरण करते हैं, लेकिन सूर्य लोक में थोड़ा भी अंधकार नहीं रहता, पहुंचता नहीं, हर लेते हैं समाप्त कर देते हैं, कहने का सही है। तो श्री कृष्ण समस्त पापों को हर लेते हैं, इसलिए उनको हरि कहते हैं, दुख को हर लेते हैं, और समस्त जीवों के चित्त को भी हर लेते हैं अपने सौंदर्य माधुर से या वेणु वादन से, तो इसीलिए इनका नाम है हरि, यथाजथम हरति, वे सबके चित्त को हर लेते हैं, जंगम जीवों के चित्त को तो हरते ही हैं, जड़ जीवों के भी चित्त को हर लेते हैं, सारी इंद्रियों की वृत्ति को हर कर लेते हैं। तो सीधा अर्थ है हरि का अर्थ है हरति इति हरि, जो हरण कर लेता है उसका नाम है हरि। क्या क्या हरण करते हैं भगवान, अनेक जन्मार जित पाप चौरम, अनेक जन्मों तक रच रच करके जो लोग पाप करते हैं और पाप को छिपा करके रखते हैं उनको भी भगवान भर ले। पाप रहता कहाँ है, कहाँ से हरण करते हैं, हरण करते हैं हृदय में बैठकर, हृदय में पाप रहता है, पाप का मूल हृदय ये गंदा होता है और इससे वासनाएं उठती हैं। तो जो वासनाएं हैं भगवत विरुद्ध भक्ति शून्य काम करने की वस्तुओं को भोगने की, यही है पाप, इस पाप को वे हर देते हैं। भागवत में लिखा गया कि हरि हृदय में स्थित होकर के अपने शरणागत के पाप को नष्ट कर देते हैं। हृदय में स्थित होकर के पाप नष्ट करते हैं, इसका अर्थ यह है कि जब भगवान श्रवण कीर्तन के द्वारा हृदय में स्फुरित होते हैं तो वे इतना सुंदर है, इतना मधुर है कि उनकी ही केवल कामना भक्त को रह जाती है और कोई कामना नहीं होती है, तो ऐसे ही सारा पाप नष्ट हो गया। जैसे कोहरा को सूर्य नष्ट कर देता है वैसे भगवान हृदय में स्थित होकर सारे पाप वासनाओं को नष्ट कर देता है। अन्य उपाय से, अन्य तरीके से हृदय को शुद्ध करना असंभव है। जब तक भगवान हृदय में नहीं आते हैं तब तक पाप वासनाएं दूर नहीं हो सकती। इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी भागवत के बिल्कुल अंत में कहते हैं तस्मा सर्वात्मना राजन हृदिस्थम कुरु केशव। इसलिए हे राजन सब प्रकार से हृदय में केशव को लाइए, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। भगवान चित्त को हर लेते हैं, अनंत विशेषता है भगवान की, किसी को किसी विशेषता से, किसी को किसी विशेषता से। जैसे रुक्मिणी जी के चित्त का हरण किया कृष्ण ने अपने गुणों से, अपने रूप से, किसी किसी को अपने शरीर के गंध से, किसी किसी के चित्त का हरण अपने शरीर के गंध से कर लिया। जैसे वैकुंठ में शनकादिक के चित्त का हरण कर लिया उन्होंने अपने चरण के सुगंध से, अपने शरीर के सुगंध से। गोपियों को अपने रूप से हरण किया या वेणुवादन से हरण किया। राष्ट्रीलम गोपियां कहते हैं चित्तम सुखे न भवता हृतम गृहेश, और ही बातें कहते हैं आपके विशाल वक्षस्थल को देखकर, आपकी लंबी लंबी भुजाओं को देखकर, आपका अत्यंत सुंदर मुख देखकर, और एकांत में जो आप प्रेम से हमसे बोले उसे सुन करके, और आपके वेणुवादन को सुन करके हम आप हमारा चित्त अपना अनुरक्त हो गया। इस तरह से हरण करते हैं और वेणु वादन का प्रभाव तो आपने सुना है किस तरह से वे वृक्ष तक के चित्त को हरण कर रहे, इसलिए हरि। तो तब तक भाव केशु और भिन्न भिन्न प्रकार से कृष्ण की शरण लेते हैं, जीव कृष्ण के संपर्क में आते हैं और भिन्न भिन्न भाव के भक्त होते हैं, ये सब हरिदास है। तस्य दासेषु मध्ये श्रेष्ठ श्री गोवर्धन, जितने भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं दास हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं श्री गोवर्धन। प्रमोद, प्रमोद जो कृष्ण बलराम के चरण स्पर्श से सदा प्रमोद में रहते हैं, प्रकर्षेण मोद, प्रकृष्ट मोद, मोद का अर्थ होता है आनंद सुख। गोवर्धन सदा सुखी रहते हैं, तो प्रकृष्टो मोदो हर्षः रोमांच स्वेदानंदाश्रु आदि स्वरूप, आदि स्वरूप त्रिनादिक गमार त्रिणादि उपगम जलबिंदु श्रावणादि लक्षण। प्रकृष्ट मोद रहता है, हर्ष रहता है गोवर्धन को, कैसे पता चलता है, क्योंकि ये हमेशा रोमांचित रहते हैं और शरीर में पसीना निकलता है, आनंद के आंसू चुते रहते हैं आंखों से। तो यह क्या है, रोमांच है त्रिंगे। घासें जो उगी रहते हैं गोवर्धन पर्वत सब जगह, ये है रोमांच। और पानी सब जगह कुछ न कुछ पसीजता रहता है तो इसको स्वेद कहते हैं। और झरनों से पानी झरता रहता है ये है अश्रुबिंदु, आंसू बहते रहते हैं। तो इस प्रकार सर्गदास गोवर्धन को रोमांच होता रहता है, पसीना निकलता रहता है और आंसू चूता रहता है। यही तो सबसे श्रेष्ठ दास की भक्त की पहचान है, हर्ष रोमांच आनंदाश्रु राग। भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा है कि कथम बिना रोम हर्षम द्रवता चेतसा बिना, जब तक व्यक्ति को मेरी कथाओं के श्रवण से कीर्तन से रोमांच नहीं हो जाता होता रहता है और आंसू नहीं आता है और चित्त द्रवित नहीं होता है, गला गदगद नहीं होता है, तो उसके शुद्ध होने की कोई संभावना नहीं। ये 14वें अध्याय में एकादश स्कंध के कहते हैं कथम बिना रोम हर्षम द्रवता चेतसा बिना नंदाश्रु कलया। ये तीन लक्षण प्रकट होते हैं जिसको कृष्ण से प्रेम हो जाता है, कृष्ण की वार्ता के श्रवण से या स्मरण से या कीर्तन से, उसमें ये अपने आप ही उद्भूत होते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं। तो ऐसे जानबूझ करके इसे उत्पन्न नहीं किया जाता है लेकिन अपने आप भक्ति का ऐसा प्रभाव होता है कि होता रहता है, होता रहता है। कभी कभी किसी किसी भक्त में देखा जाता है कि रोमांच हुआ कोई बात सुनकर के और आंसू आया, वाणी गदगद हो गई बोलने में। यह पहचान है पर्वत इस तरह सदा रोमांचित रहते हैं, सदा स्वेद उनके शरीर पर, सदा आनंद आंसू। क्यों? राम कृष्ण चरण स्पर्श, राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, राम और कृष्ण के चरणों के स्पर्श से प्रसन्न इतना होते है, इतना सुख होता है कि उससे रोमांच होता है, आंसू आता है। तो श्री गोपी जन बोल रही हैं और आपने जैसे पहले सुना सदा वे श्री कृष्ण के प्रेम में बात करती और श्री कृष्ण के प्रति उनका बहुत ही उज्ज्वल माधुर्य भाव है, तो फिर बीच में यहां श्री बलराम जी को क्यों बोल रहे हैं? राम कृष्ण चरण स्पर्श स्पर्श प्रमोद, राम कृष्ण, राम का अर्थ है रमते सदा अथवा क्रीड़ती सदा इति राम, जो सदा रमते हैं खेलते रहते हैं आनंद में उनको राम कहते हैं, या रमयति सुखयति इति वा राम, और जो दूसरों को सुखी करते हैं रमाते हैं उनको राम कहते हैं। तो ऐसे कृष्ण के चरण कमल का स्पर्श पर राम है, कृष्ण के चरण कमल का स्पर्श पाकर गोवर्धन बहुत प्रफुल्लित रहते हैं। तो राम का अर्थ है जो रमते रहते हैं अपने आप में आनंद में मग्न है और दूसरों को आनंद में मग्न करते हैं उनको राम कहते हैं। तो कृष्ण शब्द का विशेषण है राम, ये कृष्ण का विशेषण है राम। तो राम कृष्ण ऐसा नहीं कि और राम कृष्ण या दुखी कृष्ण, राम कृष्ण का अर्थ है आनंद में मग्न राम और दूसरों को भी आनंद में मग्न करने वाले, रमाने वाले और रमने वाले, जो रमती या रमयती सराम, किसको रमाते हैं? सबको रमा देते हैं, अस्मानती श्री गोपियों कहने का मतलब हमको भी परमाते हैं, सुख देते हैं और अपने आप स्वयं रमण करते हैं, सुख में रहते हैं, तो इसलिए उनको राम कहा। तो श्री गोपीजनों के कहने का भाव है कि श्री गोवर्धन को कृष्ण के चरण कमल का स्पर्श सदा मिलता रहता है, लेकिन हम हतभाग्नी हैं कि हमें उन चरणों का स्पर्श नहीं मिलता, हम सेवा नहीं कर पाते। जद्वा तथैव रामौ यौ कृष्ण चरणौ, अथवा कृष्ण चरण इसका विशेषण है राम। चरण कैसा है कृष्ण का, जो रमा देता है और अपने आप में रमता है, कृष्ण चरण की विशेषता है राम। तथैव रामौ यौ कृष्ण चरणौ तयो स्पर्शे न प्रमोद, यही आनंद है। यदि संस्कृत का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होगा तब व्यक्ति इसको समझ सकता है, नहीं तो राम का अर्थ तो सीधे बलराम करेगा, जो कि प्रसंगों के अनुसार उचित नहीं है। कुनिंदिया कृष्ण के चरण पर स्थित और तृण पर लगी हुई कुमकुम को अपने वक्षस्थल पर लगाती हैं, तो उस संदर्भ में गोपियों को स्मरण हो रहा है कि उस चरण मेरे वक्षस्थल, हमारे वक्षस्थल पर कृष्ण का चरण होना चाहिए, तो कृष्ण के प्रति यह भाव भी थोड़ा। तो बीच में श्री बलराम जी का नाम जो ले रही हैं गोवर्धन में रमण करने में, तो यह एक भाव पे हो सकता है कि श्री बलराम जी का नाम ले रही हैं तो स्वभाव गोपनार्थम, अपने भाव को छिपाने, लेकिन यहां यह भाव क्या छिपाना है अपने सखियों में, जबकि इसके पहले लगातार कृष्ण के ही विषय में बोल रहे हैं, इसलिए राम का वह अर्थ है जो रमणीय हैं, रमा देते हैं, स्वयं रमते हैं, ऐसे कृष्ण चरण के स्पर्श से तो रमते हैं। तो पहले रमते शब्द लीजिए, कृष्ण चरण शब्द, कृष्ण के चरण कमल रमते हैं कहां, गोवर्धन पर। गोवर्धन पर्वत कृष्ण के चरण के स्पर्श से रमता है, सुखी होता है, तो अर्थ बाद में आएगा, लेकिन कृष्ण के दोनों चरणाब्ज, दोनों चरण कमल गोवर्धन पर रमते हैं, चलने में बहुत सुखी होते हैं, पहले यह अर्थ ले रहा हूं। चरण स्पर्श प्रमोद, गोवर्धन पर्वत शिलामय है, पत्थरमय है, परंतु कृष्ण जब पदन्यास करते हैं कहीं भी, तो वे नवनीत से भी अधिक सुकोमल अपने को कर लेते हैं, तथा शीत के दिन में, जाड़े के दिन में, आपने अनुभव किया होगा पत्थर ठंडा हो जाता है, लेकिन जाड़े के दिन में वे उसको उष्ण रखते हैं पत्थर, एक तो नवनीत जैसा कोमल और दूसरा जाड़े के दिन में गर्म और गर्मी के दिन में ठंडा, क्योंकि वो जड़ पत्थर नहीं है, वो चिन्मय है, इच्छामय है, इसलिए वे इस तरह से करते हैं। तो श्री कृष्ण जब चरण रखते हैं गोवर्धन पर्वत, तो कृष्ण के चरण को बड़ा सुख मिलता है, वो जानबूझ करके रमता है कृष्ण चरण, राम कृष्ण चरण ऐसा रमता है, और इस कारण से जो कि कृष्ण का चरण रमता है गोवर्धन पर्वत पर, तो गोवर्धन को बहुत सुख मिलता है। कृष्ण के चरणों के सुख का स्मरण करके और चरण का स्पर्श जो कि डायरेक्ट हो रहा है, तो इसका अनुभव करके गोवर्धन पर्वत को बहुत सुख होता है। ऐसी शिला हम लोग देखे हैं जो गर्मी के दिन में ठंडा रहती है और ठंडा के दिन में गर्म रहती है। अयोध्या में एक पिलर है, खंभा, हम लोग जाते थे तो जाड़ा में उसको छूते थे, गर्म लगता है, गर्मी के दिन में ठंडा लगता, भगवान की व्यवस्था है, संसार में बहुत बहुत विचित्र वस्तुएं होती हैं। तो गोवर्धन पर्वत एक तो समग्र शिला को ही नवनीत से भी अधिक सुकोमल रखते थे। यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि नवनीत से भी अधिक सुकोमल रहेगा तो कृष्ण का शरण तो धस जाएगा बिल्कुल। नहीं, इतना कोमल रखते थे आप, नवनीत से भी अधिक कोमल फेन होता है दूध का। पर ऐसी व्यवस्था रहती थी कि वो पूरा धस नहीं पाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि पत्थर बिल्कुल पिघल जाते थे आनंद से, और गर्मी का दिन है तो ठंडा और ठंडा का दिन है तो गर्म, उस पर कृष्ण खड़े होते थे तो कृष्ण के चरण के नीचे जितने भी जाव अंकुश वज्र स्वस्तिक आदि चिन्ह होते थे उभर जाते थे। गोवर्धन पर्वत सब जगह कृष्ण के चरणों का, चरण चिन्हों का अलंकार गोवर्धन ही धारण करते, और इस कारण से उन्हें प्रकृष्ट मोद है। अब इस मोद के लिए, आनंद के लिए केवल प्र शब्द लगाया जाता है। ऐसा आनंद संसार में कोई भी सुख पाकर के कोई नहीं कर सकता है, कोई भी वस्तु पाकर नहीं जितना सुखी गोवर्धन। और श्री कृष्ण गोवर्धन पर प्राय चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, बलराम और कृष्ण के चरण का स्पर्श करके वे आनंद में, यह तो बात है ही, लेकिन इसका मुख्य अर्थ है रमणीय कृष्ण के चरण का स्पर्श प्राप्त करके बहुत सुखी। और रमणीय कृष्ण चरण गोवर्धन का स्पर्श पाकर के बहुत सुखी रहते। ये दोनों अर्थ हैं। जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, क्योंकि श्री कृष्ण के चरण है कमल से भी अधिक सुकोमल है, इसलिए चरण कमल कहा जाता है, चरणाब्ज चरणारविंदम। तो श्री गोपिया जो इतना बोलने में दक्ष हैं, तो भगवान के चरणों को छूछे क्यों बोल रहे हैं, क्यों नहीं कमल लगाया, यह प्रश्न उठता है। भगवान के चरण तो वास्तव में कोटि कोटि कमल से भी अधिक सुकुमार और सुंदर, क्यों नहीं यहां पर अब्ज शब्द लगाया या कमल शब्द लगाया गोपियों ने। इसका कारण यह था, उनके मन में एक बार यह उदित हुआ कि हाय हाय, हमारे प्रियतम के चरण बहुत सुकुमार हैं और वे पत्थर पर रखते हैं, तो इस कारण से कमल कहने में संकोच हो गया, कह नहीं पाए, इससे व्यग्रता के कारण, क्योंकि कमल से भी अधिक सुकुमार चरण है, इसलिए कमल कहना उचित नहीं समझ। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पद पूर्ति में वो बाधक होता है इसलिए नहीं यूज किया गया, यह आर्ष ग्रंथ है, कहीं से भी कमल फिट किया जा सकता था चरण का वर्णन करने में, लेकिन नहीं किया। गोपियों के मन में आया कमल जैसा कहना यह उचित नहीं, बहुत ज्यादा सुकुमार है सुंदर कमल की अपेक्षा, और कमल तो कुछ काल के लिए सुंदर रहता है बाद में मुरझा आ जाता है। सूरदास जी लिखते हैं कि भगवान के मुख को देखकर, भगवान के चरण कमल चरण को देख करके कमल आज तक मुंह लटका करके रहता है, कभी संकोच में बंद होता है तो कभी खिलता है, देखता है चरण तो फिर आंख बंद कर लो। तो कमल इस तरह रात्रि में बंद हो जाता है और दिन में खिलता है। तो ये कहते हैं, गोपियां कहती हैं सूरदास जी के शब्दों में, कि कृष्ण के चरण कमल की शोभा को देख करके आज तक बेचारा कमल मुरझाया तो उसको हुक लग गई, इसलिए सिर उठा करके जल्दी नहीं देखता। और चंद्रमा जब से मुख को देखा है कृष्ण के, तब से अब वो गलगल करके आधा हो जाता है, चौथाई हो जाता है, अमावस्या के दिन तो पूरा भाग जाता है। किसी के मुख की शोभा का वर्णन चंद्रमा से किया जाता है, जैसे किसी स्त्री के मुख का वर्णन लोगों ने किया चंद्रमुखी, चंद्रमा जैसा मुख ही है, लेकिन जब कृष्ण हुए प्रकट इस जगत में तब चंद्रमा से कोई तुलना ही नहीं करता था। और चंद्रमा देखा कि अच्छा ठीक है, हमसे उपमा दी जाएगी तो हमारा गौरव रहेगा, लेकिन जब चंद्रमा ने कृष्ण का मुख देखा तो हुक लगा, शोक छा गया, गलने लगा। अरे बाप, ऐसा मुख मेरे साथ इसकी तुलना कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो तो घटई बढ़ई बिरहीन दुखदाई, घटता है बढ़ता है, बिरहिणियों को दुख देता है। लोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा। तो गोवर्धन जी कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण के गौओं की सेवा करते हैं और कृष्ण के सहचरों की सेवा करते हैं। मानम तनोति, साधु के जितने भी गुण होने चाहिए उसमें से यह एक अनिवार्य गुण है कि वह भगवान की सेवा करे और भगवान के दासों की सेवा करे, भगवान के सहचरों। तो उसको बता रहे हैं किस तरह से ये सेवा करते हैं। मानम तनोति, मान का विस्तार करते, तनोति का अर्थ विस्तार करते हैं। विस्तार करने का अर्थ है खूब अच्छी तरह से जहां जथा शक्ति गोवर्धन सेवा करते हैं गौओं की और कृष्ण के पार्षदों की, सखाओं की और कृष्ण की और बलराम जी। गो शब्दे न अन्य अति पशव तद उपलक्ष्य, मानम तनोति सह गो गणयो, सह गो गौओं के साथ कृष्ण की सेवा करते। इसका अर्थ है जब कृष्ण की सेवा करते हैं उसी समय सबकी सेवा करते हैं, अथवा भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न प्रकार से गौओं की सेवा करते हैं, सखाओं की सेवा करते हैं गिरिराज जी और कृष्ण की सेवा करते हैं। तो गौ शब्द से अन्य पशु भी समझ लेना चाहिए, मनुष्य के लिए या पशु के लिए। पीने लायक पदार्थ अर्थात पानी, पानी का सीधा जल अर्थ पहले किया जाएगा, जल बहुत आवश्यक। प्रथम जिसे अपने आप झरत होता था, बहुत सुंदर और स्वाद और सुगंधित जल, सुगंधित जल। कुछ शिलाएं ऐसी होती थी जिनमें अपने आप सुगंध निकलती थी और जड़ी बूटी से टकरा करके पानी आता था, बहता था। इसलिए शीतल सुगंधित स्वादिष्ट स्वच्छ जल झरझर झरझर झरते हैं और उसको पीती थी गौएं, गण और कृष्ण। गौएं तक स्प्रिंग वाटर पीती थी, गिरिराज से शुद्ध निर्झर के पानी गिरते रहते, उसको पानीय कहते थे। बहुवचन पानिया नहीं, जल मधु आदि, जल और मधु आदि पीने के। दीर्घत्वम आर्षम, इसमें जो सु शब्द है वो दीर्घ है तो उसका अर्थ ये आर्ष प्रयोग है और छंद के अनुरोध से रखें। दीर्घत्वम आर्षम छंदोनुरोधात्, सुयवस का क्या अर्थ है, सुयवसानी कोमलानी सुंदर, यवस सुंदर, गवत का अर्थ बहुत सुंदर, तृण सुंदर, तृण का अर्थ क्या है, पहली विशेषता है कोमलानी, कोमल कोमल तृण, और गुण है पुष्टि वर्धनानी जो गौओं को पुष्ट कर देते हैं। घास ऐसे ऐसे सुंदर, ऐसी घास सुंदर है कि उसको खा करके पशु पुष्ट हो जाते हैं। शरीर को पोषने वाले तत्व तो सारे उस घास में भरे पड़े, ऊपर से कुछ छिड़कने की जरूरत नहीं है, नमक या खली या हवा, यदि हरी हरी घास मिले पशुओं को तो सबसे ज्यादा पुष्ट वो उससे होते हैं। तो पुष्टि वर्धनानी दुग्ध संपाद कानी च, और दूध दुग्ध संपाद कानी, ऐसे ऐसे घास जिनसे दूध बहुत बनता है, तो शरीर में बल बढ़ता है उन घासों को खा करके और दूध बढ़ता है, इसलिए उनको सुयवस कहा है। बहुत सुंदर गवत गोवर्धन जी देते हैं, गौएं खा खा कर पुष्ट होती हैं और बहुत दूध बढ़ता है उनके थन में। पानीयम का अथवा पानीयम सुवते सूयते छरंती पानीय सुई मृदुनी जवसाद, अथवा यवस का विशेषण पानीय किया गया है, ऐसे गवत जिनमें पानी चूता रहता है,
सूखा घास नहीं, सूखी घास नहीं, बहुत अच्छा सी। आजकल के तो पशुओं को पानी में भूसा डालते हैं तब खाते हैं, पानी से थोड़ा उसको कोमल बनाया जाता है। जो लोग सेवक हैं वो लोग ऐसा करते हैं, नहीं तो दूसरे लोग बस सूखे भूसे डाल दिए, बस खाओ चाहे मत खाओ, और उसी को मान लिया जाता है गो सेवक शिरोमणि। सूखा भूसा डाल, लेकिन वास्तव में जो गो सेवक होते हैं उसमें खली मिलाते हैं, चोकर का पानी मिलाते हैं और कई प्रकार से उसको सिक्त करते हैं सूखे भूसे। लेकिन गोवर्धन में जो घास तृण उग रहे हैं वो अपने आप पानी पानी से युक्त है। पानी का अर्थ है बहुत ही सुंदर स्वाद बढ़ाने वाला, घास का स्वाद बढ़ाने वाला तत्व, तो अपने आप घास के साथ जुड़ा हुआ है। ये पानी का अर्थ जैसे घास को आप ऐसे दबाइए तो पच पच पानी आएगा, न कोमल न अच्छी, ऐसा कोमल घास मृदुनी जवसान जदवा सुयवा प्रस्रव पुष्प फलादि इति क्वचित पाठ। तो पुष्प और फल बहुत अच्छे अच्छे हैं और भू उपवेशार्थम सुंदर स्थान नित्य अर्थ। कंदरा, कंदरा का अर्थ गुहा। गिरिराज में सैकड़ों गुफाएं हैं और उन गुफाओं में जत्र तत्र सर्वत्र व्यवस्था है रत्न पर्यंक, रत्न की सज्जा भीतर। गिरिराज चिन्मय है, कोई जड़ नहीं, रत्न की सज्जा और रत्न का पीठ और रत्न का प्रदीप और रत्न का विलास स्थान। तो कभी कृष्ण सोना चाहते हैं, चाहे उनके गण है हजारों हजारों लड़के हैं और सबको थकावट है गोचारण कर, विश्राम करने की इच्छा है तो गिरिराज जी की गुफाओं में गए, और जाड़ा का दिन है तो गुफा गर्म है और गर्मी का दिन है तो ठंडा, और सबके लिए अलग अलग देश लगा सो, या बैठना चाहे तो उनके लिए उपदेश स्थान है, बैठे हैं हंसी मजाक कर रहे हैं, उसी में बहुत प्रकार के नाटक भी करते हैं, बाध्य हो रहा है। और कृष्ण बांसुरी बजाते हैं गुफा में तो गुफाएं और प्रतिध्वनित होती हैं, पत्थर से टकरा करके शब्द बड़ा जमता है, तो कुछ गाना होता है तब भी वो लोग भीतर चले जाते हैं। बाहर तो आकाश में हवा में उड़ जाता है शब्द, लेकिन गुफा में खूब गूंजता है टकराता है। तो सोने का भी स्थान है रत्न पर्यंत, बैठने का है या लेटने का, इसको विलास कहते हैं। मैं आधा केवल लेटना चाहे तो आराम कुर्सियां हैं फैल करके रहते हैं। प्रदीप एक, क्योंकि एक बात यहां शंका हो सकती है कि गुफा में प्रवेश करते हैं, गुफा बड़ी है तो अंधकार से भरी होगी, गुफाओं में बहुत भयावह अंधकार रहता है और बहुत हिंसक जीव जंतु भी रहते हैं उसमें, भालू सिंह बाघ, तो कोई बच्चा उसमें कैसे जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसी गुफाएं नहीं, ऐसे प्रदीप स्थान स्थान पर है। प्रदीप, प्रदीप का अर्थ है घी का दीपक नहीं जलाए जा रहे, ऐसे रत्नमय दीपक रखे हुए हैं कि पूरा अंधकार नष्ट रहता है, तो कोई धुआं नहीं उगले। आजकल तो बिजली चली जाती है तो लाओ 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 कैंडल और मोमबत्ती का धुआं भर जाता है घर में, उससे तो अंधकार अच्छा था धुआं से। तो गिरिराज जी की गुफाओं में रत्न के दीपक होते हैं, उसे थोड़ा भी धुआं नहीं निकलता, कुछ नहीं, अपने आप जगमग रहते हैं, कूलिंग लाइट रहती है अपने आप। ऐसा रत्न, ऐसा पत्थर ही, ऐसा रत्न ही है कि वो अपने आप है बड़ा बड़ा रत्न चमकता रहता। आदर्श, आदर्श का तो शीशा, कोई बच्चा अपना मुख देखना चाहे श्रृंगार करना चाहे तो सब चीज सुलभ, जहां तक वो स्फटिक के मणिया हैं चाहे शीशे चमक रहे हो उसी में पत्थर में ही अपना मुख देख लो श्रृंगार कर। आदर्श आदय अपि उपलक्ष्य, तो गुफा शब्द से ये सब उपलक्षित, रत्न पर्यंक पीठ कुर्सी प्रदीप और शीशा इत्यादि शीशा एक ग्लास में मणि का दर्पण और कंदमूलई, कंदमूल से तात्पर्य है वन में जितने भी प्रकार के फल आदि मिलते हैं सब। कंद और मूल शब्द का प्रयोग किया गया है लेकिन फल का प्रयोग नहीं किया गया। क्यों? कंदर कंद मूलई, कंद और मूल में कोई वास्तविक भेद नहीं है, स्वरूप भेद नहीं है, थोड़ा थोड़ा आकार में भेद होता है लेकिन वो जमीन के अंदर ही बैठते हैं। फल इसलिए नहीं कहा गया कि अपने आप समझ लेना चाहिए, फल तो चारों तरफ भरा पड़ा है, वो तो सेवा करते ही इसके साथ कंद मूल फल देते हैं। तो कंद मूल से सेवा करते हैं तो क्या गिरिराज जी स्वयं ही अपने में से उखाड़ करके ला देते हैं? नहीं, इसका अर्थ है कि इतनी मिट्टी हल्की रखते हैं कि कोई बच्चा ऊपर से पकड़े और कंद निकाल दे। तो कृष्ण को या उनके सखाओं को देने के लिए ही उत्पन्न किए, ऐसा नहीं कि एक कंद को खोदने में ही एक डेढ़ घंटा निकल जाए और उधर गौएं निकल जाए तो सही तरह बहुत आसानी से निकाल लेते हैं कंद मूल। तो इन सब वस्तुओं के द्वारा सेवा करते हैं, इसलिए धन्य है गिरिराज, तुम लोगों में शक्ति नहीं है इस प्रकार की सेवा की, क्योंकि तुम लोग अबला। गिरिराज में जो सामर्थ्य है कृष्ण की सेवा करने की, कृष्ण की सेवा करना कठिन है, कृष्ण के सखाओं की और गौओं की कहां से सेवा हो पाएगी? अबला। या करना भी चाहती हैं तो पति आदि के परतंत्र में रहना पड़ता है, बल नहीं हो। कथंचित दास्यम अपि न घटे पैती, और हम लोगों के लिए तो कृष्ण की दासता भी संभव नहीं हो पाती है। अहो बत अभाग्य वैभवम इति भाव, हमारे अभाग्य की कितनी समृद्धि, कितना अधिक अभाग्य धीरस्म, तुम लोगों को धिक्कार। रामम जगन मनोरमम जत कृष्ण से चरण आचरण। अब यहां चरण शब्द का अर्थ है लीला से कर रहे हैं सीता सनातन गोस्वामी। अब तक तो चरण के स्पर्श से प्रमोद बताया जा रहा था लेकिन श्री गोपीजन चरण शब्द लिखी है, पद नहीं लिखी, ये अंघ्री नहीं, अंघ्री नहीं कही, चरण कही। तो चरण का अर्थ है आचरण भी होता है, उसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है। आचरण का अर्थ है चलना, खेलना, गाना, बोलना, विविध लीलाओं को चरण कहा जाता है। उसे हम आ लगावे या न लगावे कोई जरूरत नहीं, चरण का अर्थ ही है लीला। तो चरण स्पर्श प्रमोद, चरण के स्पर्श से प्रकृष्ट आनंद है गोवर्धन को। तो स्पर्श का क्या अर्थ होगा? चरण का तो ठीक है लग जाएगा कि आचरण लीला क्रीड़ा, लेकिन स्पर्श का अर्थ किया जा रहा है विश्रापणम वितरणम स्पर्शनम च, विस्तारणम वितरणम स्पर्शनम च। अमर कोश में यह कहा गया है कि विहरण शब्द वितरण और स्पर्श शब्द से भी व्यक्त होता है। स्पर्श शब्द भी विहरण अर्थ में है, आचरण अर्थ में है, यह स्पर्श शब्द इस अर्थ में है। लीलाओं का स्पर्श हो रहा है, विस्तार हो रहा है, यह हमें बोला विश्रावणम वितरणम स्पर्शनम, चरण विस्तार आचरण विस्तार, लीलाओं का विस्तार गिरिराज जी में सब। कहीं कृष्ण झूला झूलते हैं, कहीं गुफाओं में लुका छिपी का खेल खेलते हैं, आंख निचौनी खेलते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, विविध रास विहार करते हैं, गोवर्धन की घाटी में दान मांगते हैं गोपी गणेश, कई प्रकार की लीलाएं होती है। तो इसको चरण स्पर्श कहते हैं, चरण विस्तार आचरण विस्तार लीला विस्तार, और इसके कारण गिरिराज जी प्रकृष्ट मोद में रहे। भगवान के क्रीड़ा के स्थानों में गिरिराज जी का एक अनूठा स्थान है। पहले यह कहा गया कि भिलनिया तो सौभाग्य होती है ही, क्योंकि जहां जहां कृष्ण जाते हैं वहां वहां जाने में समर्थ हैं, लेकिन ये पर्वत तो एक जगह रहेंगे लेकिन कृष्ण स्वयं ही आकर के खेलते ही रहते हैं इनमें, इसलिए गिरिराज गोवर्धन सबसे अधिक भाग्यशाली। सर्वदा सदा तत्क्रीड़ा संपादन सुख इत्यर्थ। अब यहां प्रमोद शब्द का अर्थ किया गया, राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। प्रमोद का अर्थ होता है आनंद में उत्सुक। तो रमणीय कृष्ण के लीलाओं के स्पर्श में अर्थात विस्तार में ये सदा उत्सुक रहते हैं, या कृष्ण की लीलाओं का संपादन करके ही गिरिराज जी को सुख प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत के रस का स्वादन करने के लिए कुछ कुछ संस्कृत भाषा का ज्ञान बहुत आवश्यक है। स्पर्शनम शब्द का अर्थ हम लोग केवल यह समझेंगे टच, स्पर्श, लेकिन यहां स्पर्श का शब्द का अर्थ है विस्तार, चरण विस्तार, लीला विस्तार, आचरण विस्तार। और इससे गिरिराज जी बहुत खुश होते हैं, चाहे यह करने के लिए उत्सुक रहते हैं। लीला विस्तार, लीला के लिए स्थान दे। तत् क्रीड़ा संपादन तत्श्रावणादिना सर्व दुख हरणा सेवा विस्तारणा च सर्वेशा में वसिद्ध। जब श्री कृष्ण को इस तरह सुखी करते हैं तो सबको सुख मिल जाता है। यह कहे होते कि गोपों के लीला का विस्तार, ये गौओं के लीला का विस्तार, वो न कहकर कृष्ण के लीला विस्तार की बात करें, क्योंकि कृष्ण को जब सुख दे रहे हैं तो उसे अपने आप समझ लेना चाहिए कि सबको सुख मिला। जदवा रामयो कृष्ण चरणयो इव स्पर्श प्रमोदो जस्य एतत् स्पर्शेन। अथवा रामयो कृष्ण चरणयो, रमणीय कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके जैसी खुशी होती है, जितना आनंद होता है किसी को, उतना आनंद गिरिराज जी का स्पर्श करके होता है। एक अभी अर्थ आनंद सिद्ध। हरिदास वर्जत्व न निरंतर विचित्र प्रेम विहार श्रेणी भी तत्चरण स्पर्शमय तया युवास्मिन संपत्ति रीति अलम अति विस्तरे न। श्रीका सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हम क्या विस्तार करें, रसिक भक्त स्वयं ही चिंतन करें किस प्रकार से गिरिराज जी में कृष्ण लीला करते हैं और गिरिराज जी सेवा करते हैं सबकी, और गिरिराज जी में विहार करके श्री कृष्ण को कितना सुख मिलता है। कृष्ण के विहार से गिरिराज जी को सुख मिलता है और गिरिराज जी को सुख मिलता है, कृष्ण को सुख मिलता है गिरिराज में विहार करके, और गिरिराज को सुख मिलता है कृष्ण के विहार। यहां तक श्रीपाद सनातन गोस्वामी का भाव भी कहा गया। संक्षेप में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भाव सुनिए। हंत सख्यो महदाश्रयणम बिना नैव मनोरथ फलति। हे सखियों, जब तक महत पुरुषों का आश्रय नहीं लिया जाता है तब तक मनोरथ सफल नहीं है। और महत्वम च हरिभक्ता नाम एव, और महत्ता हरिभक्तों की ही है। तेषाम अपि मध्य श्री गोवर्धनो गिरीन्द्र एव मुख्य। और महत पुरुषों में भगवत भक्तों में सबसे बढ़ करके गिरिराज गोवर्धन ही है। इति गार्गी मुखात श्रुतम। यह हमने गार्गी के मुख से सुना है। तद अस्य तत्रत्य मानस गंगायाम स्नात्वा तद अधिदैवत श्री हरिदेव नामनो नारायण से दर्शनार्थम जाना। तो इसलिए हम लोग ऐसा करें कि गोवर्धन में मानसी गंगा है तो उसमें चल करके हम लोग स्नान करें और वहां इसके अधिदैवत, मानसी गंगा का अधिदैवत चाहे गिरिराज जी के अधिदेव इष्ट देव भगवान विष्णु रहते हैं, जिनका नाम है हरिदेव, तो उनका दर्शन करने जाएंगे, चलो उनका दर्शन करेंगे, क्योंकि इति अत्र गुरुजनाना नापि नैव विप्रतिपत्ति, इसमें गुरुजनों का भी कोई विरोध होता नहीं, मैं हरिदेव जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हरिदेव जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो गुरुजन भी विरोध नहीं करेंगे, लेकिन वो तो उस हरि का दर्शन करने जाना चाहिए। तो गंगा जी में स्नान करेंगी और हरिदेव नामक नारायण का दर्शन करेंगी तो गुरुजन भी मतलब सास ससुर आदि भी इसमें कोई विरोध नहीं करेंगे। और कृष्ण की तत्रैव खेलती इति युक्ति, और कृष्ण वहीं खेलते हैं, विहार करते हैं, तो उनसे भेंट होगी, सेवा करेंगी। इति निश्चित वक्त्यः श्री गोवर्धनमेव सगण कृष्ण वांछित साधकम सवांछित सिद्ध्यर्थम स्तुवन्ति। तो गोवर्धन श्री कृष्ण की इच्छा पूरी करते हैं उनके गणों के साथ, गौओं के साथ, तब हम लोगों की भी इच्छा पूरी करेंगे, इसीलिए गोवर्धन की प्रशंसा कर रहे हैं। हंत इति विस्मय हरिदासेषु नारदादिषु अपि मध्ये मुख्या ये त्रयो। हरिदासों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं जैसे नारद जी आदि, या हरिदास जैसे नारद जी इत्यादि, तो उनमें भी मुख्य ये त्रयो, ये तीन मुख्य हैं। हरिदासा युधिष्ठिरोद्धव गोवर्धना, युधिष्ठिरोद्धव गोवर्धना ये तीन है, युधिष्ठिर, उद्धव और गोवर्धन। तेसु अपि मध्य अयम अद्री रेव हरिदास वर्ज, उसमें यह अद्री पर्वत ही सबसे श्रेष्ठ। तो तीनों को कहां कहां कहा गया है हरिदास, देखिए, हरिदासस्य राजस्य राजसूयम् महोदयम् इति युधिष्ठिरे, युधिष्ठिर में हरिदास शब्द का प्रयोग किया गया। कृष्णम संस्मारय अम्रे में हरिदासो ब्रजौकस इत्युद्धव या उद्धव, और हंताय मद्री रबला हरिदास वर्ज इत्यस्मिन् अस्मिन् पर्वते अपि हरिदास पद प्रयोगा, यस्मात् राम कृष्णयोः चरण स्पर्शेन शिला द्रवाद्गभी व्यंजितो प्रमोदो जस्य स। राम कृष्ण के चरण स्पर्श से यह प्रकृष्ट मोद में रहता है पर्वत, कैसे पता चलता है, क्योंकि शिला द्रव आदि होता है, शिलाएं पिघलती रहती, शिला द्रव आदि से या निर्जल के पानी आदि गिरने से या तृण द्वारा इसका प्रमोद पता चलता है। चरण स्पर्शे सति शिला नाम पंक साधर्म प्राप्त्या, जब शिलाएं चरण का स्पर्श होता है तो शिलाएं बिल्कुल कोमल हो जाती है, अपने को नवनीत जैसा कर लेती है, या गोवर्धन जी अपनी शिलाओं को इस तरह कर लेते हैं, तो पंक साधर्म प्राप्त है, पंक साधर्म प्राप्त है, पंक जैसी शिलाएं हो जाती है, जितनी कठोर शिलाएं होती है वो पंक बन जाती है, कीचड़ बन जाते हैं पंक, और उसमें ध्वज वज्रांग कुशादि तत्चरण चिन्ह, उस पर कृष्ण का चरण चिन्ह बनता है, और निर्झर झरना तथा तृणों के उद्गम से तथा ये अश्रु पुलकादि होते रहते हैं, ये प्रमोद व्यंजक आदि है, ये प्रमोद के व्यंजक। अत्र राम पद प्रजो को भाव गोपनार्थ गोपनार्थम, यहाँ राम शब्द जो कहा गया है बलराम जी को अपने भाव को छिपाने के लिए, मैं दोनों भाई के लिए बोल रहे हैं, कोई एक नहीं स्पेशल अटैचमेंट नहीं, यह एक बोलने की कला होती है। सो भाव गोपनार्थ अथवा श्लेषेण, या श्लेष से अब दूसरा अर्थ किया जाता है, रामो रामो नील चार सीते त्रिशु इति अमर कोश, अमर कोश में बताया गया है कि राम शब्द का अर्थ है नील, सुंदर और असित, यानी सीते सीते, नील चारु और सीत, सीत का अर्थ होता है उज्ज्वल, चारु का अर्थ है सुंदर, और नील का अर्थ है नीला, इन तीनों में राम शब्द का प्रयोग किया जाता है, और भी है और चीजों में राम शब्द का प्रयोग होता है, तो इसमें भी यहां राम शब्द का प्रयोग किया गया है चारु, शब्द के चारों का अर्थ सुंदर राम इति अमर कोशा तो यहाँ अर्थ है रमणीयो यह कृष्ण तस्य चरण स्पर्शेन प्रमोद तस्य चरण स्पर्श रमणीयो यह कृष्ण तस् हे अबला इति पति पार्वस्यवती नाम जुष्माकम तदा श्रेणम एवं बलम बुद्धते इति भाव हे अबलाओं पति के अधीन रहने वाले तुम लोगों के लिए गोवर्धन ही बल है क्योंकि गोवर्धन में हरिदेव जी का दर्शन करने में कोई बाधा नहीं यहाँ ये बल की स्फूर्ति हो रही है। जत जत प्रमोदा देव हेतु मानम तत् प्रसाद निया पूजन तनोती इसी आनंद से गिरिराज जी खूब पूजा देते हैं उपहार देते हैं कृष्ण को उनके सखाओं और गौओं के साथ सह गोभी गणेन सखवी संघेन च वर्तमान में तयो कई किन वस्तुओं से सम्मान करते हैं पानियानी पानियानी का अर्थ पाद आचमनीय पानार्थम पैर धोने के लिए जल देते हैं आचमन के लिए जल देते हैं और पीने के लिए जल देते हैं और आदि शब्द से स्नान करने गौ भी खूब नहाती हैं पीती हैं भगवान नहाते हैं पीते हैं आश्रम कर इसके लिए जब कभी कभी कृष्ण ऐसे नहाते हैं गिरिराज से झरने झरते और उसमें गए छमछम छमछम नहाते रहते झरनों में नहाने का आनंद एक अद्भुत आनंद है। इस तरह से पानी यानी बहुत वचन में पानी पाद्य आचमन कोई अतिथि आता है तो सबसे पहले पाद्य अर्पित किया जाता है पाद्य का अर्थ होता है पद संबंधी जल पैर धोने का या जो श्रेष्ठ वैष्णव आदि हो तो स्वयं चरण धोया जाता है केवल उनको जल नहीं दे दिया जाता है झोल धो लीजिए चल पाद्य और आचमन आचमन का अर्थ है मुख धोना आचमन का केवल यही अर्थ नहीं होता है कि पीतल के पात्र में छोटा छोटा पानी लेकर के बस ओठ को गीला कर लेना इसका अर्थ होता है मुख को अच्छा से धोना आचमन और पान पीने के लिए सुगंध शीतल निर्झर जलानी का अर्थ तथा नैवेद्यार्थम अच्छा ये तो हुआ पाद्याचमन पीना और नैवेद्य नैवेद्य कहते हैं खास करके ठोस पदार्थ खाने के लिए तो नैवेद्यार्थम पानीया याद कर दो नैवेद्य पानी अर्थात पेय मधु आम्र पिलवादि रसश्च मधु और आम और पीलू आदि बहुत से फल हैं उनका बच्चे रस चूसते हैं तो उसको भी पेय ही कहा गया खा नहीं रहे पी रहे हैं फलों सुजवसानी और सुंदर गौर यहां पूजा शब्द मान आया है इसलिए पूजा में कौन कौन द्रव्य लगते हैं चक्रवर्ती पारी बताते हैं अब अभ्यार्थम दुर्बाग और गवाम ग्रासार्थम सुगंध सुकोमल पुष्टि वर्धन दुग्ध संपादकानी तृणांश अच्छा अच्छा दुग्ध भी देते हैं जिसे पूजा की जाती है और खूब सुगंधित घास जदवा पानीयम सुयते पानीय सु निर्झराश्च निर्झर कंदरा उपवेश सज्जायाम विलासाद्यार्थम शीतोष्णमय सुख दुखदा गुहाश्च भक्षणार्थम कंद मूलानी च और तत्रत रत्न प्रजंग प्रदीप आदर्श आदि अभी उपलक्ष्यते हैं इन सबसे गिरिराज जी सेवा करके रहते हैं कृष्ण की तो बात तो सब समझ में आ गई एक एक शब्द श्री गोपियां श्री गोवर्धन जी के विषय में क्या कहते हैं तो एक एक बात का स्मरण करना चाहिए और कैसे कोई व्यक्ति हरिदास बनता है इसमें मुख्य बात है कि उसे भगवान का स्पर्श प्राप्त होना चाहिए चरण स्पर्श और भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा होनी चाहिए तब वो हरिदास
और जो इस कार्य में सबसे श्रेष्ठ हो तो हरिदास भक्त हो। जो गोवर्धन सब कुछ देते हैं और सबको देते हैं, कृष्ण के गौओं को और कृष्ण के सखाओं को, कृष्ण को, बलराम जी को, और सब चीज अपने सुना भोजन देते हैं, पीने के लिए देते हैं, और सज्जा बैठने के लिए, खेलने के लिए गुफाएं, सब कुछ, झूलने के लिए वृक्ष। इसलिए गिरिराज जी पर्वत हरिदासों में सबसे श्रेष्ठ। हरे कृष्ण।
गोवर्धन की रहिए तरेटी, गोवर्धन की रहिए तरेटी, गोवर्धन की रहिए तरेटी, गोवर्धन की रहिए। नित प्रतिमा जन गोपाल लाल के, 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 चरण कमल चित गहिए तरेटी, गोवर्धन की रहिए तरेटी, गोवर्धन की रहिए तरेटी, गोवर्धन की रहिए। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, 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 गोविंद कुंडन है ये, गोवर्धन की रहिए तरेटी, गोवर्धन की रहिए तरेटी, गोवर्धन की रहिए तरेटी, गोवर्धन की रहिए।
और जब बात करने की इच्छा हो कोई तो सीधे गिरधारी जी से बात कीजिए।
रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जिस कहिए, गिरधारी जो सकिए तरेटी, गोवर्धन की रहिए तरेटी, गोवर्धन की रहिए तरेटी, गोवर्धन की रहिए तरेटी, गोवर्धन की रहिए।
यह पद बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रिय है वैष्णव समाज में।
गिरी की जय, गोधन मयूर नव कुंजन को, गिरी की जय, गोधन मयूर नव कुंजन को, गिरी की जय, गोधन मयूर नव कुंजन को, सुखी जय महाराज नंद के बदर को,
सुखी जय महाराज नंद के बदर को,
भाषा के शब्द हैं सब लोग नहीं जानते हैं। बगर का अर्थ होता है झुंड या बाघ। हमारे यहाँ कहते हैं कब बाघ भेड़ बड़ी बगर में झुंड सौ सौ झुंड को एक बगर का
पशु की जय महाराज नंद के बगर को
पशु की जय महाराज नंद के बगर को
नर की जय तन जान राधे राधे नाम रटे
नर की जय तन जान
जय भर खुल काली कदर
की जय भर खुल काली कदर
इतने जो कुछ कीजिए कुंवर कान
इतने
नयन फेर हठी के झगर को
नयन फेर हठी के झगर को
गोपी पद पंकज पराग की जय महाराज
गोपी पद
पद पंकज पराग की जय महाराज
गोपी पद पंकज पराग की जय महाराज
प्रेम की जय रव रे गोकुल नगर को
प्रेम की जय रव रे गोकुल नगर
प्रेम की जय गोकुल नगर को
कल होली लीला का पद गाया जा रहा था शिवदास जी का एक पद पद्माकर जी का है उसको गा लेते हैं पृष्ठ 27 पर एक श्लोक है ये कवित है बहुत बड़ा पद नहीं है सताईस पृष्ठ पर पहला पद है एक संग धाये नंदलाल और गुलाल दो कृष्ण होली खेल रहे थे राधा रानी के साथ और दौड़े दौड़ करके उन्होंने गुलाल मारा तो गुलाल आंखों में आया और कृष्ण का सौंदर्य भी साथ में ही जाकर आंख में गड़ गया तो कृष्ण की छवि गड़ गई तो गुलाल और लाल कृष्ण दोनों एक ही साथ आए एक ही साथ आंख में आ गए और दृगली गयेजु भरी आनंद मढ़ाया नहीं और आंख में दोनों छा गए फिर भी बहुत आनंद आ रहा था गुलाल आया और उसके पहले लाल आ गए गुलाल वो आंख में धस गए इतना आनंद हुआ कि आनंद मढ़ाया नहीं मढ़ाए मैंने आनंद को मढ़ा नहीं जा सकता सीमा नहीं बनाई जा सकती उसकी और मैं धोने लगी गुलाल को धोने लगे लेकिन धोई धोए हारी पद्माकर तिहारी सौ सखी तुम्हारी शपथ खाकर कहते हूँ धो धो करके हार गई लेकिन अब कोई उपाय नहीं निकल रहा है कि कैसे उस लड़के को अहीर के लड़के को आंख से धोकर बाहर कर दूं गुलाल तो निकल गया वो तो एक बार धोने से ही बाहर आ गया लेकिन जो लाल गड़ गया हृदय में वो नहीं निकल रहा है एक संग धाय नंद लाल गुलाल दो
एक संग धाय नंद लाल गुलाल दो
एक संग धाय नंद लाल गुलाल दो
एक संग धाय
गनी गए जो भरी आनंद मढ़ नहीं
गनी गए जो भरी आनंद मढ़
चित्र समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। गुलाल तो पानी से खत्म हो गया लेकिन नंदलाल कैसे निकलेगा आंख से, अब तो हार गई, खुद धोने से थोड़े निकलेगा। अब तो उपाय ये कोचित पे चढ़े नहीं,
अब तो उपाय ये कोचित पे चढ़े
कैसी करूं कहां जाऊं कासो कहूं कौन सुने,
कैसी करूं कहां जाऊं कासो कहूं कौन सुने,
कोऊ तो निकासो जासो दर्द बढ़े नहीं,
कोऊ तो निकासो जासो
तो आंख नहीं है ना, आंख के रास्ते से कलेजा में धस गए हैं, तो कोई तो निकालो जिसे दर्द बढ़ने ना पाए। तेरी मेरी बीर जैसे तैसे ही मैं आखी ना सो,
तेरी मेरी बीर जैसे तैसे ही मैं आखी ना सो,
कढ़ी गया बीर पया हीर को कढ़े नहीं, अबीर कर गया परंतु अहीर का नहीं करा, मैंने अहीर नंद का लड़का नहीं करा, इन आंखों से अबीर तो निकल गया। एरी मेरी बीर जैसे तैसे न आखी न सो,
एरी मेरी बीर
कढ़ी गया बीर पया हीर को कढ़े नहीं।